मम्मा के बारे में अव्यक्त संदेश 12 वाली सोमवार 6 जुलाई 1965। आज सोमवार है। प्राण माँ को मधुबन से विदाई लिए 12 दिन हुए हैं। आज खास प्राण माँ की याद में भोग लगाया गया और प्राण माँ को बच्चों से मिलने के लिए निमंत्रण भेजा हुआ है। प्राण माँ की पधरामनी हुई तो उनसे नैन मुलाकात कर हाथ मिलाते हुए बाप दादा बोले, मम्मा अब कहाँ निवास स्थान है? प्राण माँ बोली, सूक्ष्म वतन में। बाबा बोले, सेवा में तत्पर हो? इशारे से हाँ। आज बुलाया गया है, बच्चों को कुछ दो शब्द भी सुनाओ, समाचार भी कुछ सुनाओ। देखो ये बच्चे कहाँ कहाँ से है, पहचानती तो होंगी बहुतों को। आगे तो कचहरी भी करती थी, सेल्वेशन भी पूछती थी। सूक्ष्म वतनवासी माँ बोली, सबकी सेवा के साथ साथ शिव बाबा के साथ विनाश की तैयारियों का भी साक्षात्कार कराते रहते हैं। जो अनन्य भक्त है उनके पास भी जाते रहते हैं और आप वत्सों की भी रूहानी सेवा करते रहते हैं। यहाँ अंत समय प्रभाव निकालने के निमित्त जो व्यक्ति है उनका भी इन एडवांस साक्षात्कार उनको भी इन एडवांस साक्षात्कार कराते रहते हैं। अंत प्रेरणा से अंतवाहक शरीर द्वारा उन्हों की बुद्धियों को प्रेरणा की सेवा चलती रहती है। कौन सी सेवा?
अंतवाहक।
अंत प्रेरणा से अंतवाहक शरीर, सूक्ष्म शरीर, अंतवाहक शरीर, सटल बॉडी, एंजेलिक बॉडी, कारण शरीर। तो उस शरीर द्वारा अंत प्रेरणा से किसकी बुद्धियों को? जो व्यक्ति इन एडवांस जो प्रभाव निकालने के अर्थात प्रत्यक्षता के निमित्त बनने वाले ऐसों को भी साक्षात्कार कराते रहते हैं। फिर तो भोग की तैयारियां हुई और माँ ने अपने होली हस्तों से सबको भोग दिया। भोग का सिस्टम किसने चालू किया यज्ञ में? भोग का सिस्टम दादी जानकी का जो अनुभव आया है उसमें तो दादी ने लिखा है कि मम्मा ने चालू किया है। फिर तो भोग की तैयारियां हुई और माँ ने अपने होली हस्तों से सबको भोग दिया। बाद में बाप दादा ने सबको गोद में बिठाया और प्राण माँ मुख में टोली देती गई। लगभग 1.5 घंटे तक यह अनोखी रंगत रही। बाद में प्राण बाबा ने प्राण माँ को स्थूल वतन से विदाई दी। संदेश, आज वतन में बाबा ने खास मम्मा को बुलाया था और हम सब बच्चों ने भी मम्मा को बुलाने का बाबा का संदेश दिया था। जाते ही मम्मा और बाप दादा बाह्य रूप से तो दो मूर्ति थी लेकिन वास्तव में त्रिमूर्ति। दूर से ही बहुत दिनों के बाद ही वतन में मम्मा को देखा तो पहले तो थोड़ी सी खुशी हो रही थी, फिर यह भी आ रहा था कि बहुत दिनों के बाद मुखड़ा देखा। मम्मा का देखना बड़ा ही कैसा होगा, निर्मोही था, उपराम तथा न्यारा था। मम्मा का देखना कैसा था? निर्मोही, उपराम और न्यारा। उपराम अर्थात यहाँ की सर सब बातों से ऊपर, अनासक्त, साक्षी। प्यार तो उसमें भरा हुआ रहता ही है, ऐसी अवस्था के आगे हमारा कुछ चल नहीं सकता। बाबा ने कहा माँ से मिलो, हम आगे बढ़ी तो मम्मा ने कहा नहीं, पहले बाप फिर माँ। फिर बाबा के पास बड़ी और मिली। मम्मा ने कहा सुनाओ तो विशेष याद किसकी थी? हमने कहा वैसे तो बीज को याद करते हैं, परंतु आपकी भी याद थी। मम्मा ने हालचाल पूछा। सभी बच्चे किस रफ्तार से चल रहे, फिर कहा तुम बताओ तुम क्या समझती हो? तो मैंने कहा उमंग तो बहुत है, उमंग के साथ कदम भी उठा रहे हैं, मेजॉरिटी सब में उमंग है कि जैसे हमारा हमारे मम्मा बाबा का यादगार रहा वैसे हम भी कर्तव्य करें। मम्मा ने कहा, यादगार अपना कायम कैसे होता है? क्या मुख्य बात ध्यान में रहे जो हमारा यादगार कायम रहे? मम्मा बाबा ने क्या किया जो यादगार रहा? मम्मा ने सुनाया, जो जितना जितना याद में रह करके कर्म करता है उसका उतना यादगार बनता है। याद में रहकर कार्य नहीं करते हैं तो नहीं, तो याद का फल बनता है यादगार। तो हर एक बच्चा अपने को अभी भी देख सकता है कि मेरे बाद मेरा यादगार कितना रहा। याद में रहना है तो याद में भी जितनी स्टेज और परसेंटेज रहेगी उतना यादगार बनेगा। जैसे कोई कोई आत्माएं ऐसी स्टेज वाली है, अभी अभी याद रहे, अभी अभी भूले। तो ये था 12वें दिन का संदेश। तो उसमें मुख्य है कि मम्मा का देखना कैसा है, निर्मोही है, उपराम है और न्यारा है। कल भी मोह के बारे में कुछ था मुरली में, क्या था? मोह का कीड़ा क्या होता है उसका? निकलता नहीं, अपनी रचना को समझाओ, अगर नहीं समझे तो क्या कर दो? अपनी रचना को समझाओ, अगर नहीं समझी रचना तो निकाल दो, घर से भगा देना चाहिए। उसके लिए हिम्मत चाहिए, उसके लिए नष्ट मोह चाहिए। तो वो प्रैक्टिस अभी करनी है कि हमारा जो मोह है वो धीरे धीरे निकलता जाए। मोह की रगे बाबा ने कहा मुश्किल निकलती है। तो बड़ा ही निर्मोही, उपराम तथा न्यारा, ये स्वरूप है मम्मा का। फिर यादगार बनने का, यादगार कायम रहने का साधन क्या है? जितना याद में रहेंगे उतना ही
यादगार
यादगार बनेगा। जितना याद में रहकर कर्म करेंगे, और उसमें भी स्टेज और परसेंटेज का महत्व है। फिर है 22 जुलाई का संदेश। सर्व रूहानी सेंटर के दैवी बहनों और भाइयों को हम मधुबन निवासियों की याद स्वीकार हो। मधुबन से संदेश जा रहा है। आप सबके दिलों में तो उमंग अवश्य उठा ही होगा कि वर्तमान समय मधुबन की स्टेज पर क्या पार्ट प्ले हो रहा है। समय प्रति समय मुरलियों द्वारा हम बच्चों को बाप दादा बहुत बहुत रिफ्रेश कर रहे हैं। खास इस बारी मधुबन कंठे पर कुंभ का मेला बड़ा भारी हुआ, जहां पर सर्व सेंटर्स के हैंड्स तथा उनके स्टूडेंट्स ने हर प्रकार की रिफ्रेशमेंट पाई। इस समय मधुबन में बिल्कुल शांति लगी पड़ी है। जुलाई का मास, अमृतसर, बटाला, कुछ कुछ मुंबई, पुणे, दिल्ली व नांगल की पार्टियां है। बारिश का मौसम भी चालू हो गया है, ठंडी ठंडी हवाएं, कुछ धूप, कब बादल तो कब बारिश, यह रंग बिरंगी मौसम चलता रहता है। मधुबन में जो प्यारी माँ का पाठ पंछी द्वारा प्ले हुआ, वो दिनचर्या तो मुरली द्वारा आपके पास पहुंच ही गई है, लेकिन इस बार जो अचानक माँ का पाठ प्ले हुआ वह भी अनोखा ही था। गुरुवार प्रातः 5:30 बजे बाप दादा ने अचल, सती और देवी, इन तीन संदेशियों द्वारा शिव बाबा को मम्मा की मधुबन में पधरामनी का निमंत्रण भेजा। तीन संदेशियों के द्वारा, अचल, सती और देवी। साथ में बाबा ने यह भी संदेश भेजा कि पूछ कर आना कि इन तीन संदेशियों में से माँ की पधरामनी किस तन में होगी। तीनों को लगाया लाइन में। शिव बाबा बोले कि साकार बाबा, आप ही जान लेंगे कि माँ किसके तन में आई हुई है। क्लास पूरा होने के बाद हमें आयशा के प्रोग्राम अनुसार भोग प्रारंभ हुआ। तीन पंछियों को बड़ी गद्दी पर बिठाया गया, अचल, सती और देवी। बाबा अपना सिंहासन छोड़ उन्हों की बाजू में बैठे, तीनों को दृष्टि देते रहे। पल में तीनों ही जाए वतन में पहुंची। तो मम्मा किसके तन में आई फिर? इतने में ही देवी बहन और सती बहन के रथ में संपूर्ण मम्मा तथा ऑलमाइटी बाबा की पधरामनी हुई। देवी बहन के तन में संपूर्ण मम्मा और सती बहन के तन में ऑलमाइटी बाबा, अचल बहन के तन में साकारी मीठी मम्मा की पधरामनी हुई। कैसे पहचानना? किसको कैसे, नया कोई हो तो कैसे पहचाने? हम बच्चे भी तीनों से बारी बारी दृष्टि लेते टोली लेते गए। साकारी माँ अचल बहन के तन में बच्चों से मीठी दृष्टि से मुलाकात करते हुए हरेक के प्रति बहुत धीमी आवाज से कुछ न कुछ शिक्षा देती रही। सती बहन और देवी बहन तो पाठ बजाए वापस आ गई, लेकिन बाबा ने माँ को यहाँ की देखरेख करने भेजा था। क्लास समाप्त होने के बाद माँ को बाबा अपने कमरे में ले गए, जहाँ माँ ने अपना प्रोग्राम बताया कि बाबा ने कुछ समय के लिए बच्चों से मिलने भेजा है। फिर साकार बाबा के डायरेक्शन अनुसार जिस रीति से पहले माँ का कमरा बनाया गया था उस रीति से बनाया गया। फिर दो बच्चों से पर्सनल बात की, बाद में भंडारे तरफ चली। वहां भी हम बच्चों को शिक्षाओं से सजाए, जिसमें खास ब्रह्मा भोजन के महत्व को बताया। कहा, तुम जब ब्रह्मा भोजन बनाते हो, सब्जी काटते हो, तो उस समय एक ही शिव बाबा की याद में रहकर करने से इस ब्रह्मा भोजन में ताकत रहती है। 5000 वर्ष बाद वही देवता झाड़ के बिछड़े हुए बच्चे डायरेक्ट आ मिले हैं। डायरेक्ट ब्रह्मा भोजन का बड़ा महत्व है, तो ऐसे ब्रह्मा भोजन को प्यार से बनाना है। यह बाबा की दुकान है, जहां बहुत सच्चाई और ईमानदारी से सेवा करनी है। देखा देखी की सेवा नहीं करनी है, लेकिन बड़े प्यार से घर का मालिक समझ सेवा करने से कुछ बनता है। यह मेरा ही घर है, मेरा ही परिवार है, ऐसे समझने से फिर दूसरा भाव नहीं उठेगा। फिर वो कोई बात में आनाकानी नहीं करते, लेकिन जब इस मेरेपन के भाव से निकलते हो तो द्वेष उठता है। कौन सा मेरापन? यहाँ पर हमारा घर, अपनापन। मेरापन अर्थात यहाँ पर है अपनापन। मेरा ही घर है, मेरा ही परिवार है, जिसका एक अथक बाप से बुद्धियोग है, वो कब थक नहीं सकता। बच्चा वो कब थक नहीं सकता। बाबा अथक है, जिन्हों का बुद्धियोग अथक के साथ है वो कब थकेगा नहीं। तो यज्ञ को मेरा समझ बड़े प्यार से चलना है। इस यज्ञ की संभाल के लिए इतना क्यों कहा जाता है? ऐसा भी नहीं होगा कि जो देरी से आएगा वो जल्दी स्वाहा हो जाएगा, लेकिन जो पहले अर्पण हुए हैं और पूरी पहचान कर नहीं चलते हैं, तो नयों का फिर संपूर्ण स्वाहा करने में देरी हो जाएगी। आहुति दी हुई चीज बाहर निकलती है तो फिर स्वाहा होने में मेहनत लगती है। बच्चों की अवस्था के ऊपर ही इस सारे स्थूल यज्ञों के स्वाहा होने का मदार है। तो क्या सुना? विशेष इसमें शिक्षाएं जो है वो एक तो ब्रह्मा भोजन के बारे में, क्या कहा, ये बाबा की दुकान है जहां बहुत सच्चाई और ईमानदारी से सेवा करनी है, ये यज्ञ के बारे में, और ब्रह्मा भोजन को बहुत प्यार से बनाना है। एक है बनाना, एक दूसरा है खाना, याद में खाना। कैसे बनाएंगे? याद में कैसे बनाएंगे? कौन कौन से संकल्प हमारे मन में हो जब भोजन बनाते हैं तो? अर्पण करने के लिए बना रहे, एक तो समर्पण भाव किसके लिए बनाया जा रहा है, एक और प्यार से बनाना है, समान में स्थित होकर बनाना है, और जो जो सामग्री है जिससे बनाया जा रहा है उस एक एक सामग्री को दृष्टि देते हुए और याद में और समान के साथ बनाना। जैसे अगर सब्जी बनाई जा रही है तो एक एक चीज जो हम ले रहे हैं, तेल ले रहे हैं, उसको दृष्टि देना है, प्यूरिटी की। सब्जी ले रहे हैं उस सब्जी को दृष्टि देना है। जो जो चीज, जो जो सामग्री उसमें लग रही है, चाहे वो मसाला है या कुछ भी हो, वो एक एक चीज को दृष्टि देते हुए भोजन बनाना। जो बना रहा है वो तो ही याद रहेगी, नहीं तो कितना समय वो संकल्प चलेगा, एक ही। नहीं तो ज्यादा संकल्प ये आ जाता है कि किसके लिए बना रहे हैं, मतलब उसके पीछे एक सूक्ष्म भावना भी होती है कि ये बहुत टेस्टी बने और जो खाए वो उसकी तारीफ करे, वो हमारी गुण गाए। शिव बाबा थोड़ा बाजू में रह गया है, वो ये तो रहता ही है ना कि सब जो खाए इसको वो तारीफ करे, पूछे भाई किसने बनाए हैं, तो फिर थोड़ा नाम होता है ना। जो भी बनाता है ये भाव तो रहता है उसमें। इसके लिए जो हमारे संकल्प है उनको ऑक्यूपाइड रखना है, भोजन बनाते समय किस तरह से, किस विचारों से, किस भावना से। भावना बहुत महत्वपूर्ण है, और जितना एकांत में बनाया जाए वो सबसे अच्छा, जितना मौन में बनाया जाए वो सबसे अच्छा। उसमें दिखावे का भाव ना हो, नुमाइश, दिखावट वो ना हो। अति प्रेम से बनाया हुआ भोजन परमात्मा स्वीकार करते हैं, और सम्मान के साथ धन्यवाद देते हुए भी, शुक्रिया अदा करते हुए परमात्मा का, ये सारे ही भाव। और अति प्रसन्न चित्त से, प्रेम से, प्रसन्न चित्त से, सच्चाई। वो सेवा के लिए कहा है बाबा ने, चलो वो भी आ गया उसमें। परंतु अति प्रेम से, समर्पण भाव से, और जो जो सामग्री उपयोग की जा रही है उस एक एक सामग्री को भी दृष्टि देते हुए, चाहे वो फिर हम थोड़ा भी कुछ बना रहे, चाहे वो चाय ही क्यों ना हो, चाहे वो कुछ केवल गर्म करना ही क्यों ना हो, हमारा जो भोजन बनाना है, एक है फटाफट बना लेना जल्दी जल्दी में, टाइम कम है, फटाफट फटाफट बना लेना, एक है फटाफट फटाफट खा लेना। भोजन बनाना और भोजन खाना, ये समय हमारा योग का समय हो जाए। और अगर हम खुद बनाते हैं तो खुद ही उसका भोग लगाए। एक होता है फटाफट, और भोजन बनाते समय बीच में कुछ ना खाए, किसी किसी की आदत होती है ऐसी। नहीं, चखना अलग बात है टेस्टी हुआ कि नहीं, पर वो बीच बीच में कुछ और खाए, कुछ और खाए, इधर भोजन बनाना भी चालू है, इधर आम खाना भी चालू है साथ-साथ इधर भोजन भी चालू है, इधर आम भी, कुछ और भी खाना चालू है। वो उनको क्या कहते थे जो भोजन बनाते थे संसार में, एक बार बताया था ना, महाराज। संसार में जो भोजन बनाते हैं उनको महाराज कहा जाता है। महाराज अर्थात जो अपने कर्मेंद्रियों का राजा है, उनको स्वयं पाकी कहा जाता है। जो भोजन, जो रसोई है, उसको स्वयं पाक घर कहा जाता है। स्वयं पाक अर्थात जो स्वयं बनाता है, वो दूसरों के हाथ का नहीं खाते, वो इतने स्वच्छता से बनाते हैं। वल्लभाचार्य जो संप्रदाय है, या इस तरह के बहुत सारे ब्राह्मण संप्रदाय है, वो खुद बनाते हैं, और जब बनाते हैं तो एक अलग प्रकार का वस्त्र पहनते हैं, नया एकदम। और उस रसोई घर में और कोई नहीं जा सकता, इतनी स्वच्छता और इतनी पवित्रता और इतनी शुद्धता से जो बनाया जाता है, मर्यादा पूर्ण, वो ही भोजन भगवान को प्रिय लगता है। और हमारा जो भोजन बनाने का समय है वो योग हो जाए, साइलेंस में बनाया जाए, एब्सोल्यूट साइलेंस, मुख का मौन। सबसे पहले क्या क्राइटेरिया है, मुख का मौन, कोई दिखावा नहीं उसमें। ये भाव भी नहीं कि जो इसको खाए वो हमारी तारीफ करे, याद में बनाया जाए। एक तो ये, एक है बनाना, फिर दूसरा है खाना। अभी खाना कैसे है, सबसे मुख्य है एकांत में। अगर भीड़ में भी है परंतु हम एकांत में हो, उस भीड़ में एकांत का अनुभव, एक दूसरा बहुत प्रेम से, प्रसन्नता से, दुखी होकर नहीं। भोजन देखते ही मूड ऑफ हो जाता है कई होकर, पसंद का अगर नहीं रहा तो मूड ऑफ। जो भी मिल रहा है बहुत प्रेम से, आदर से, एक एक, क्या कहती है मम्मा, क्या कहती थी, एक एक गिट्टी नहीं, दाना मुहर के समान है, एक एक दाना मुहर के समान है, एक भी अन्न इतना लेना ही नहीं कि जो वेस्ट करना पड़े। पहले इतना ले लेते कि पता है हम खाने वाले नहीं है, फिर भी ले लेते, इस डर से कहीं खत्म ना हो जाए। नई चीज है, अगर नई चीज है वो तो जानबूझ के थोड़ा ही लेना, वेस्ट नहीं हो। वो थाली धोकर भी पीते हैं सन्यासी, संसार के लोग, वैष्णव भक्त जो होते हैं, एस्कॉन में जाओ तो पता चले कितना अन्न का वहां महत्व है उनका। एस्कॉन टेम्पल्स है ना हरे कृष्णा वाले, बहुत महत्व है उनके पास। तो वेस्ट नहीं करना, याद में खाना, एकांत में खाना, भोग लगा कर ही खाना, चाहे वो जनरल में भोग लग रहा है वो लगने दो, बस दिखा और टूट पड़ना वो एक होता है, गरम गरम है तो टूट पड़ो उसके ऊपर। जितना धीरे खाएंगे उतना उसमें आसक्ति कम होगी, जितना फास्ट खाएंगे उतना और ज्यादा खाने की इच्छा होगी। धीरे धीरे शांति से, प्रेम से और अनुग्रहित, जैसे कि उसको धन्यवाद करते हुए। किस किस को धन्यवाद करेंगे भोजन खाते समय? सबसे पहले तो परमात्मा को कि उसने दिया। संसार में लोग भूखे मर रहे, भूखों मर रहे कितने लोग, और ये मिल रहा है हमको इतना सब कुछ। एक तो परमात्मा, यज्ञ, यज्ञ के प्रति कृतज्ञता का भाव, यह सोचकर कि हमारी पालना यज्ञ से हो रही है, चाहे यहाँ रह रहे चाहे गृहस्थ में रह रहे। निरंतर बाबा ने कहा, आगे वही है ना सारा यज्ञ, इसको अपना समझना, घर समझना, उस भाव से कि ये मेरा है संपूर्ण, मतलब ये जो पालना जो मेरी हो रही है यज्ञ से हो रही है, सब कुछ जो मिल रहा है यज्ञ से मिल रहा है। इसके लिए डायरेक्ट कोई भी चीज नहीं लेनी है, इवन मार्केट से कुछ चीज लेते हैं हम, पहले यज्ञ में जाने दो, बाबा के सामने रखो और फिर बाबा से उसको लो। अगर कोई व्यक्ति कुछ देता है वो भी पहले बाबा के सामने रखो, इसके पहले कि हम उसका उपयोग करते, चाहे वो कपड़े हो चाहे और भी कोई चीज हो, पहले उधर और फिर वहां से हमको लेनी है, ताकि मन में निरंतर ये संकल्प रहे कि हमारी पालना यज्ञ से हो रही है, बाप से हो रही है। ये दूसरा संकल्प। और भोजन बनाते समय और किसको धन्यवाद देंगे? अभी चालू हो गया, उस किसान, प्रकृति, प्रकृति कितनी सुखदाई है, कितने उसके आभार प्रकट करे, कितना ना हम उसके प्रति ऋणी है कि उसने हमें ये भोजन दिया। एक तो वो किसान और प्रकृति, और जो भोजन बनाने वाली माताएं हैं, कितना त्याग कर कर आती है इधर। हमारे ओपीडी में पेशेंट्स आती है, माताएं आती है, एक ही ज्ञान में चलने वाली, सारा घर विरोध, वो सबका विरोध सहन कर कर यहाँ आती है एक मास के लिए। और अगर उनको ज्यादा बीमार हो तो कहती है केवल दवाई ही दो, अगर उनको कहा जाए कि एडमिट हो जाओ, बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, फिर भी क्या उनके अंदर संकल्प होता है कि सेवा के लिए आइए, बाबा के ऊपर बोझ नहीं बनना है। कितना श्रेष्ठ संकल्प होता है, जितना जल्दी होना है उनको जाना है, वहां से रुकना ही नहीं है बिल्कुल, यहाँ इसलिए आए नहीं थे। तो ये एक बहुत, वो सारी माताओं के प्रति जो जो भोजन बना रहा है उन सब के प्रति धन्यवाद का भाव हो, हमारे अंदर श्रेष्ठ भावनाएं हो उन सब के प्रति। और क्या संकल्प हो खाते समय मंजू बहन?
मधुबन वाले भाई भाई जो बनाते
वो सबके प्रति, और जो परोस रहे उनके प्रति भी। और दूसरा और एक श्रेष्ठ संकल्प करना है कि जैसे कल्प वृक्ष जो है उसके नीचे बैठकर भोजन करना है। क्यों? हम जो एक एक निवाला खाएंगे, एक एक पत्ते को जाएगा इस झाड़ के, जिन जिन को ब्रह्मा भोजन नहीं मिल रहा है उनको भी वो मिलेगा, जो जो संसार में भूखे हैं, जिनको कुछ नहीं मिल रहा है। इस हर एक देश की जो आत्माएं हैं, ऐसे कितने गरीब देश है संसार में, हम खा रहे हैं और पेट उनका भर रहा है। दूसरा, जो जो हम खा रहे हैं लाइट की थाली में, लाइट का दिया हुआ भोजन, मैं लाइट स्वरूप आत्मा, लाइट स्वरूप शरीर, लाइट के हाथों से लाइट का भोजन अंदर जा रहा है और सारे विश्व में लाइट फैला रहा है। सब लाइट ही लाइट देखना, लाइट की थाली है, लाइट का ही भोजन है, लाइट शिव बाबा की, लाइट की किरणें उस पर पड़ रही है, शरीर लाइट का है और आत्मा लाइट की है, हाथ लाइट का है, ले लिया लाइट, शरीर लाइट से लाइट में जा रहा है और इस लाइट से सारे विश्व में लाइट फैला रहा है। ऐसे भिन्न 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 संकल्प करने हैं, या फिर सबसे श्रेष्ठ संकल्प है मैं परम पवित्र आत्मा हूं, ये भूल जाता है भोजन करते समय, बार बार याद दिलाना है। जितनी बार भूलेगा बार बार याद दिलाओ, जितनी बार भूलेगा फिर याद दिलाओ, हाँ वो कर दो की तरह, फिर अपने आप को याद दिलाओ। हाँ, उनके प्रति भी कि जिन्होंने बहुत, मतलब वो सेंटर की वो माता है जो रोज 1 रुपया डालती है, कितनी भावनाएं होती है उसमें, तो हम कैसे वेस्ट कर सकते हैं उसको। जो बन रहा है, जो आ रहा है, वो बहुत भावना से डाल रही है, उनका 1 रुपया मतलब ईंट लगा रही है वो। फिर आगे, एक तो थी ये भोजन की बात, दूसरा वो अलग प्रश्न है, वो दूसरा प्रश्न है, स्थूल वो तो अलग से ही लेना है आपको, फिर उसमें नहीं, अलग से ही लेना पड़ेगा। वो कहते हैं कि प्याज, जैसे रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण है, उन्होंने कहा एक जगह कि जिस, जैसे ये शरीर है, इसमें आत्मा ने इतने विकर्म किए हैं कि इतना इतना दुर्गंध है उसमें, उन्होंने इसमें उदाहरण देते हुए कहा है कि जैसे कोई बर्तन है जिसमें लहसुन अगर उसमें बनाया हुआ है तो उसकी दुर्गंध कभी जाती ही नहीं है, चाहे उसको कितना भी धो, कितना भी धो, वो जो लगी रहती है उसमें लगी रहती है। तो उस तरह के हमको अलग से ही बर्तन यूज करने पड़ेंगे, वो उसमें हम नहीं कर सकते। ये तो एकदम स्थूल का हो गया, पर वो भी बहुत जरूरी है। फिर दूसरी बात थी यज्ञ, हमारी पालना यज्ञ से हो रही है। आहुति दी हुई चीज बाहर निकलती है, फिर स्वाहा होने में मेहनत लगती है, बच्चों की अवस्था के ऊपर ही सारे स्थूल यज्ञ के स्वाहा होने का मदार है। तुम रूहानी रूहों को सेवा करनी है, जैसे अशरीरी बाप सेवा करते हैं, उसको याद करते हो तो बल मिलता है। इस रीति तुम रूहानी रूहों को रूहानी रीति से कई अज्ञानी रूहों की सेवा करनी है, ऐसे भी नहीं समझना है, यह दादी दीदियों का काम है, मैं तो छोटी हूँ, लेकिन तुम सब मालिक हो, ऐसे मालिकों का को सब ध्यान रखना है, तब बाबा की प्रेरणाओं को पकड़ेंगे। बाबा चाहते हैं कि बच्चे जल्दी आए, बाबा को बच्चे भी साथ देंगे तो जल्दी होगा। एक अनुभव, जब कोई झाड़ की चोटी पर चढ़ता है तो उसे देख कई साहस करते हैं चढ़ने का, लेकिन एक चोटी पर चढ़कर गिरता है तो उसे देख कोई को भी चढ़ने का साहस नहीं होता है। इसके लिए हमें गिरना नहीं है, क्योंकि हमें देख और गिरेंगे। तो टीचर्स बहनों को कहा ना, तुम स्टेज पर हो, सब देखने वाले, विश्व कॉपी करने वाला है, अगर तुम में व्यर्थ चलता है तो तुम व्यर्थ सिखाने के निमित्त बन जाते हो। जैसे तुमको सेवा की लिफ्ट की गिफ्ट मिली है और सेवा का शेयर लेते हो, वैसे ही अगर व्यर्थ चलता है तो सबको व्यर्थ, दोनों चीजें हैं। तो हमको गिरना नहीं है, क्योंकि हम अगर गिरे, इतने श्रेष्ठ पुरुषार्थी, तो हमको देख साहस ही नहीं करेंगे यहाँ चढ़ने के, बोलेंगे ये अगर गिर गया तो मेरी क्या औकात या कुवत। बाप दादा से अब बहुत मेहनत नहीं लेनी है, बहुत सेवा केंद्रों पर चक्कर लगाती रहती हूँ, मम्मा कह रही है। अर्जुन बाप की पूरी पहचान नहीं है, जिस कारण बहुत भूले होती रहती है। मम्मा क्या कह रही है, सेंटरों पर चक्कर लगाती रहती है, और सेंटर पर जो है बहने और भाई बहन, उनको बाप की पूरी पहचान नहीं है। जो बाप का परिचय विश्व को देती है, उनको बाप की पूरी पहचान नहीं है, जिस कारण बहुत भूलें होती रहती है, और सबसे बड़ी भूल है परसों की मुरली बाप को भूलना। तुमको सबके लिए आदर्श बन खड़े रहना है। सबसे बड़ी शिक्षा कौन सी है? जीवन, हमारा जीवन, जीवन ही गुणमूर्त, जीवन ही आदर्श, जीवन ही दृष्टांत बन जाए, सैंपल बन जाए। कई ऐसी आत्माएं जो टच हो वर्षा लेने आती है, आदर्श को प्रैक्टिकल ना देख पीछे हट जाती है। बहने बातें बहुत अच्छी अच्छी कर रही है ज्ञान की, पर उनके जीवन में कुछ भी नहीं दिख रहा है तो कौन टिकेगा वहां पर? कोर्स तो कर लिया पर बाद में देखा इनमें तो बहुत क्रोध है, इनमें उतावलापन है, इनमें हवच है, लालच है, श्रम के संस्कार नहीं है, आराम के संस्कार ज्यादा है। हाँ वो भी है, सेवा भी एक की याद में ही करनी है, उसकी याद में जो सेवा करते हैं तो सबूत भी जल्दी निकलता है। ऐसी ऐसी शिक्षाओं से सजाया माँ ने कुछ समय के बाद विदाई ली। तो ये थे मम्मा के 7 दिन के संदेश, 12वें दिन का संदेश और लगभग 1 मास का संदेश। तो आज की तारीख है 24 जून, बुधवार 2015। तो मम्मा ने जो जो शिक्षाएं दी है, दादी जानकी का आया है, सबके पास होगा वो, 50-36 पॉइंट्स है उसमें, मम्मा की विशेषता है दादी जानकी ने लिखी हुई, मेल पर आया है बहुत सारा। तो आज सारे दिन वो जो 36 पॉइंट्स है एक साथ नहीं पढ़ लेना, धीरे धीरे पढ़ते रहना उसको, दिन भर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना। थोड़ा थोड़ा पढ़ते है ना तो बुद्धि में अच्छा घुसता है। एक बार पढ़ा, फिर और थोड़ी देर के बाद 2-3 घंटे बाद फिर पढ़ा, 2-3 घंटे बाद फिर पढ़ा। बार बार अपने मन को याद दिलाना है पढ़ाई की, बार 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 पढ़ते रहना है, तो सारे ही दिन भर बुद्धि में ज्ञान रहेगा। अगर बुद्धि में ज्ञान है तो फिर वहां व्यर्थ नहीं आ सकता है। एक होता है कि कई आत्माएं ऐसी है कि जिनकी सुबह 8-9 बजे की अवस्था बहुत अच्छी है, क्योंकि पूरा ज्ञान और योग और चिंतन, और जैसे ही कर्म में गए वो पूरा विस्मृत होकर 5 बजे के बाद फिर वापस ज्ञान योग चालू करते हैं। तो ये जो बीच का अंतराल है, यहाँ पे संपूर्ण विस्मृति की अवस्था रहती है। अभी इस विस्मृति की अवस्था में, इसके लिए कई लोगों का मुझे ये भी अच्छा लगता है कि मुरली जो है पूरी नहीं पढ़ते दिन में, आधी पढ़ते हैं, दिन भर के लिए थोड़ी सी रखते हैं, क्योंकि सुबह अगर पूरी पढ़ ली तो मन में निश्चिंतता रहती है, हो गया पढ़ के। अभी कोई काम नहीं बाकी है, थोड़ा सा 1-2 पैराग्राफ मुरली के रख देना, सुनने की बात नहीं चल रही है, पढ़ने की बात चल रही है। पढ़ना तो सुबह है ही, वो भी कर्म क्षेत्र में जाने से पहले, खुद एकांत में अकेला स्टडी जिसको कहते हैं, सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय, परंतु कुछ 1-2 पैराग्राफ दिन भर के लिए भी रखना है, 5 बजे और 9 बजे के बीच के लिए, ताकि दिन में भी तो थोड़ा काम रहे, कोई नए पैराग्राफ, कोई नई पॉइंट्स। ऐसे नहीं कि पूरा ही पढ़ लिया सुबह फिर लगता है अरे क्या पढ़ तो लिया, अभी क्या करना है, अभी देखेंगे शाम में जब हमारी कुछ क्लास होगा या कुछ होगा। तो दिन के लिए भी थोड़ा थोड़ा काम रखना है मुरली का, वो भी एक अच्छा अनुभव अभ्यास है। और जैसे ये जो दादी जानकी के जो पॉइंट्स आए, 36 पॉइंट्स, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव लिखे मम्मा के साथ की उसने, छोटे 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 पॉइंट्स है, इसके लिए और पढ़ने में सुगम है। तो 1-2 पॉइंट्स पढ़ना, रुकना 1-2 घंटा चिंतन, फिर और आ जाओ, फिर और पढ़ो, फिर और आ जाओ, फिर और पढ़ो, फिर और आ जाओ और पढ़ो, इस तरह से सारे ही दिन याद में रहना है, ज्ञान के स्मरण में रहना है। और मम्मा ने जो शिक्षाएं दी है, जो जो पथ बनाया है, उसके नक्शे कदम पर चलना, ये आज का दिन इस रीति से हमको बिताना है। अच्छा, ओम शांति।